मैं आपके लिए आश्रम व्यवस्था की रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत अगली हेडिंग है आश्रम व्यवस्था के आधारभूत सिद्धांत। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न आश्रमों की ओर उनके धर्मों का उल्लेख कर लेने के पश्चात यह प्रश्न उठता है कि वे कौन से आधारभूत सिद्धांत थे जिनको दृष्टि में रखते हुए इस महत्वपूर्ण व्यवस्था का निर्माण किया गया। वास्तव में प्रत्येक समाज की विभिन्न व्यवस्थाएं उस समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से प्रभावित होती हैं। सैद्धांतिक रूप से भारतीय संस्कृति सदैव से ही व्यक्तिवादिता से पूर्व समूह कल्याण का सुंदर आदर्श रही है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था का निर्माण जिन सिद्धांतों को दृष्टि में रखकर किया गया उनका उल्लेख निम्नांकित रूप से किया जा सकता है। पहली हेडिंग, ऋण। जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, व्यक्ति पर पांच प्रकार के ऋण होते हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण, चौथा अतिथि ऋण और पांचवा जीव ऋण। इनमें से प्रत्येक तीन ऋण महत्वपूर्ण है, जबकि बाद के दोनों ऋण गौण है। व्यक्ति की अहंवादी मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए यह स्पष्ट कर दिया गया कि व्यक्ति पर जो भी कुछ वह अन्य व्यक्तियों अन्य प्राणियों के ऋण के रूप में है, वे देवताओं का ऋणी है, क्योंकि जल भूमि वायु और अन्य बहुमूल्य साधन उसे ईश्वरीय शक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। हमारे ऊपर दूसरा ऋण ऋषियों का है, क्योंकि ऋषियों की साधना तप और ज्ञान के कारण ही हम ज्ञान प्राप्त करके जीवन का विकास करते हैं। तीसरा ऋण माता पिता का है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा व्यक्ति का जन्म भरण पोषण शिक्षा और विकास संभव हो पाता है। चौथा ऋण बहुत से अतिथियों का है, जिनसे भिक्षा और अन्य वस्तुएं मांगकर हम अपने जीवन का प्रमुख भाग व्यतीत करते हैं। अंत में हम बहुत से अन्य जीवधारियों के भी ऋणी, जिनसे हमारी समय समय पर रक्षा होती है। आश्रम व्यवस्था के निर्माण में इन ऋणों की भावना को विशेष महत्व दिया गया है। विभिन्न आश्रमों का विभाजन इस प्रकार किया गया है जिससे व्यक्ति व्यवस्थित रूप से इन ऋणों से उऋण हो सके, क्योंकि ऋणों का भुगतान किए बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। दूसरा, पंच महायज्ञ। विभिन्न ऋणों से उऋण होने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करता है, उन्हीं को हमारी संस्कृति में यज्ञ कहा गया है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह यज्ञ भी ऋणों की संख्या के अनुरूप पांच है: देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ तथा जीव यज्ञ। देव यज्ञ का तात्पर्य देवताओं के ऋण से उऋण होने के लिए उनकी वंदना उपासना और साधना करना है। ऋषि यज्ञों का तात्पर्य अपने ज्ञान में वृद्धि करना, वेद्याध्यन करना तथा अन्य रूप से अपने ज्ञान में व्यक्तियों में प्रसार करना। पितृयज्ञ का अर्थ माता पिता के समान स्वयं भी संतान को जन्म देना तथा उनका भरण पोषण करना, अर्थात माता पिता की सेवा करना और उनकी मृत्यु के बाद श्राद्ध कर्म की व्यवस्था करना। अतिथि यज्ञ के अनुसार प्रत्येक नवागंतुक की सेवा करना, समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना और समाज कल्याण में योगदान करना व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अंत में जीव ऋण से उऋण होने के लिए जीव यज्ञ की व्यवस्था की गई है, जिसका तात्पर्य वनस्पति की रक्षा करना, पशुओं को भोजन देना तथा छोटे जीवधारियों के अस्तित्व की रक्षा करना व्यक्ति के प्रमुख कर्तव्य हैं। ये सभी यज्ञ आश्रम व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं, क्योंकि विभिन्न आश्रमों में रहकर ही व्यक्ति इन यज्ञों की पूर्ति उचित रूप से कर सकता है। जैसा कि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति केवल ऋषि यज्ञ को ही आंशिक रूप से पूरा कर पाता है, जबकि गृहस्थ आश्रम के दायित्व इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं जिससे व्यक्ति सभी यज्ञों का समुचित रूप से निर्वहन कर सके। वानप्रस्थ आश्रम त्याग का आरंभिक काल होने के कारण इसमें ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ तथा जीव यज्ञ को ही प्रधानता दी गई है, जबकि संन्यास आश्रम में केवल अंतिम यज्ञ आत्माहुति के रूप में शेष रह जाता है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था में इन आधारों को धार्मिक आधार के रूप में स्पष्ट किया जाता है। आधारभूत सिद्धांतों के अंतर्गत तीसरी हेडिंग है पुरुषार्थ। आश्रम व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। श्री प्रभु ने इस आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार कहा है। पुरुषार्थ एक मानसिक नैतिक आधार इसलिए है कि चार आश्रमों के माध्यम से ही पुरुषार्थ की व्यक्ति के व्यवहारों का स्वरूप निर्धारित करता है। पुरुषार्थ आश्रम व्यवस्था का मानसिक नैतिक आधार इस दृष्टिकोण से भी है कि एक और व्यक्ति इनके द्वारा अपने जीवन को व्यवस्थित करने की मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करता है और दूसरी ओर पुरुषार्थ की शिक्षाओं के अनुसार ही वह समाज में नैतिक जीवन व्यतीत करता है और दूसरी ओर पुरुषार्थ की शिक्षाओं के अनुसार ही वह समाज में नैतिक जीवन व्यतीत करना सीखता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्रमशः अमरत्व, संपत्ति, समाज की निरंतरता और निर्वाण से संबंधित है। पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का एक आधारभूत सिद्धांत इस कारण भी माना गया है कि सभी आश्रमों का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न समुदायों को पुरुषार्थों को ही व्यवस्थित रूप से पूरा करना है। आश्रम व्यवस्था के सभी कर्तव्य विभिन्न पुरुषार्थों में विभाजित है और संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति से संबंधित है। व्यक्ति यदि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के वास्तविक अर्थ को समझने में असफल रहता है, तब न तो उसके व्यक्तित्व का विकास संभव है और न ही वह आश्रम व्यवस्था के दायित्वों का निर्वहन कर सकता है। आश्रम व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण आधार पर विस्तृत विवेचना हम अगले अध्यायों में करते रहेंगे। इसके अंतर्गत चौथी हेडिंग है संस्कार। आश्रम व्यवस्था का अंतिम आधारभूत सिद्धांत विभिन्न संस्कारों से है। व्यक्तिगत जीवन का परिष्कार करके व्यक्तित्व का विकास करना है। हिंदू जीवन पद्धति में मौलिक रूप से 42 संस्कारों का समावेश है, जिनमें 16 संस्कार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इन सभी संस्कारों का उद्देश्य अनेक विधि विधानों तथा कर्मकांडों के द्वारा व्यक्ति के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तित्व का परिष्कार करना अथवा उसे अपने समकालीन कर्तव्यों से परिचित कराना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक आश्रम के अंतर्गत कुछ प्रमुख संस्कारों को पूरा करने पर बल दिया गया है और वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक आश्रम का आरंभ और अंत एक विशेष संस्कार को पूरा करने के बाद ही होता है। डॉक्टर राजबली पांडे का कथन है कि संस्कारों की पूर्ति वह मार्ग है जिसके क्रियाशील सांसारिक जीवन का समन्वय आध्यात्मिक तथ्यों के साथ स्थापित किया जाता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि संस्कार हिंदू आश्रम व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। आश्रम व्यवस्था में संस्कारों का समावेश होने के कारण ही प्रत्येक आश्रम सांसारिक आध्यात्मिकता के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करता है। उपर्युक्त विवेचन से ऐसा स्पष्ट होता है कि भारतीय जीवन दर्शन में ऋणों, पंच महायज्ञों, पुरुषार्थ और संस्कारों का अत्यधिक महत्व होने के कारण ही आश्रम व्यवस्था जैसी एक समन्वित योजना का निर्माण किया गया, जिससे इन सभी उद्देश्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करके व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास के अधिकतम अवसर प्रदान किए जा सके। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत अगली हेडिंग है आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व भूमिका। भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के समाजीकरण का एक प्रमुख आधार रही है। इस व्यवस्था का आधार यह विश्वास है कि व्यक्ति के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बिना समाज को संगठित नहीं किया जा सकता। इसका संक्षिप्त विवेचन अग्रांकित रूप से किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है जीवन का समुचित विकास। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि आयु व्यतीत होने के साथ ही व्यक्ति की कार्य क्षमता, दृष्टिकोण, अनुभवों और मानसिक प्रवृत्तियों में सदैव परिवर्तन होता रहता है। इस आधार पर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था जैसे 4 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। बाल्यावस्था में बच्चे में एक अपूर्व शक्ति होती है, लेकिन उसके पास अनुभव नहीं होता। युवावस्था में शक्ति और उत्साह के साथ अनुभवों का संचय होना भी आरंभ हो जाता है। प्रौढ़ावस्था में शारीरिक शक्ति का तो ह्रास होने लगता है, लेकिन अनुभव और विवेक व्यक्ति की सहायता करते हैं। वृद्धावस्था में शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाता है, लेकिन ज्ञान का अथाह भंडार व्यक्ति की रक्षा करता है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत आयु के इन परिवर्तनों के अनुसार ही जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित करके व्यक्ति के धर्म इस प्रकार निर्धारित किए गए जिससे वह अपनी आयु संबंधी विशेषताओं के अनुसार ही जीवन के विभिन्न दायित्वों को पूरा कर सके। इस प्रकार जीवन का समुचित विकास करने में इस व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरी हेडिंग सामान्य कल्याण को प्रोत्साहन। संसार के भौतिकतावादी समाज भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे हैं कि सामान्य कल्याण को प्रोत्साहन दिए बिना समाज को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। सारोकिन जैसे प्रमुख पश्चिमी विचारक ने भी अपनी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले आध्यात्मिक पुनर्निर्माण की बात कहना आरंभ कर दी थी। व्यक्तिवादिता के दोषों को समाप्त करने के लिए विभिन्न आश्रमों के धर्म इस प्रकार निर्धारित किए गए जिससे सामान्य कल्याण की भावना को अधिकाधिक प्रोत्साहन मिल सके। सभी आश्रमों के द्वारा समाज के सभी वर्गों को एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध किया कर दिया गया कि किसी भी एक के योगदान के बिना न तो व्यक्तित्व का विकास संभव हो सकता है और न ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती। ऐसे प्रयत्नों के कारण भारतीय संस्कृति को विभिन्नताओं में भी एकता का आदर्श प्रस्तुत करने में अग्रणी माना जाता है। तीसरी हेडिंग मानसिक स्थिरता में सहायक। आश्रम व्यवस्था ने व्यक्ति तथा समाज को अपने संघर्षों से बचाकर मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में अपूर्व योगदान दिया है। व्यक्ति को यदि अपने सभी दायित्वों की रूपरेखा स्वयं ही तैयार करनी पड़े तब इससे संघर्ष में तो वृद्धि होती ही है, साथ ही जीवन का अधिकांश भाग परीक्षण में ही व्यतीत हो जाने की संभावना हो जाती है। आश्रम व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पूर्व निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है और इस प्रकार उसे समाज के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए काफी अतिरिक्त समय मिल जाता है। वास्तविकता तो यह है कि मानसिक जीवन की इसी स्थिरता ने भारतीय संस्कृति को देशकाल की संकुचित सीमाओं से निकालकर एक विश्व धर्म के निर्माण का प्रोत्साहन दिया। चौथी हेडिंग, व्यक्ति और समूह की पारस्परिक निर्भरता। श्री प्रभु का कहना है कि व्यक्ति और समूह के बीच पारस्परिक निर्भरता बढ़ाने तथा उनमें समन्वय करने के क्षेत्र में आश्रम व्यवस्था का महत्व सर्वोपरि है। विभिन्न आश्रमों में व्यक्ति और समूह के कार्य एक दूसरे से पूर्णतया पृथक होते हुए भी वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी के फलस्वरूप हमारे समाज में एक समष्टिवादी संस्कृति का विकास हो सका। ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति समूह के प्रति तटस्थ तथा उदासीन रहता है, जबकि समूह व्यक्ति की संपूर्ण देखरेख करता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति सामाजिक जीवन का प्रबंधक तथा न्यासी होता है तथा अपने सभी कर्तव्यों को इस तरह पूरा करता है कि जिससे सामाजिक जीवन का संरक्षण हो सके। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति का संपूर्ण जीवन समाज के लिए ही समर्पित होता है। वानप्रस्थी के अपने कोई हित नहीं होते, बल्कि ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य आए युवा को अपने अनुभवों और ज्ञान से लाभान्वित करना ही उसका परम कर्तव्य होता है। समाज में संन्यास और व्यक्ति दोनों एक दूसरे के प्रति उदासीन होकर रह जाते हैं। इस समय समूह व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ता है और व्यक्ति समूह से पृथक रहकर पूर्णतया ब्रह्मा की प्राप्ति में लग जाता है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति और समूह की इस आदर्श निर्भरता ने हमारे समाज को संगठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पांचवी हेडिंग है, बौद्धिक विकास का सर्वोत्तम आधार। यह व्यवस्था बौद्धिक विकास में अत्यधिक सहायक रही है। आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जीवन के प्रथम 25 वर्षों की अवधि केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए निर्धारित की गई। इस अवधि में गुरु और शिष्य के संबंधों को ऐसा रूप दिया गया जो शिक्षा के सभी दोषों से मुक्त। गृहस्थ आश्रम में सभी धर्म कार्यों के माध्यम से ज्ञान का अर्जन समाप्त नहीं होता। इसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह अपने संचित ज्ञान और अनुभवों के आधार पर ब्रह्मचारियों को शिक्षा प्रदान करे। इस प्रकार यह व्यवस्था ज्ञान के संग्रह और उसके प्रसार का एक सुंदर समन्वय करती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति शिष्य है और प्रत्येक व्यक्ति एक शिक्षक। बौद्धिक विकास के क्षेत्र में ज्ञान के प्रसार का इससे सुंदर और आदर्श और क्या हो सकता। छठवीं हेडिंग, व्यवहारिकता। आश्रम व्यवस्था एक व्यवहारिक व्यवस्था है जिसमें जीवन के सभी कर्तव्यों को सामाजिक उपयोगिता के साथ जोड़ दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत धर्म को अलौकिक विश्वासों से न जोड़कर व्यक्ति के सांसारिक कर्तव्यों के संदर्भ में स्पष्ट किया गया। आर्थिक प्रक्रियाओं को करने में व्यक्ति को अनियंत्रित छूट नहीं दी गई, बल्कि अर्थ को मोक्ष प्राप्ति का एक साधन मानकर इसे सामाजिक कल्याण के लक्ष्य के लिए छोड़ दिया गया। इसके साथ ही आर्थिक क्रियाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए यह मान लिया गया कि इस दायित्व को पूरा किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी गुण के कारण व्यक्ति का सांसारिक जीवन उद्योगी बन सका। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम भी इस दृष्टि से अत्यधिक व्यवहारिक है कि इसके फलस्वरूप सामाजिक सेवा और त्याग की भावना को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला। परिवार में युवा पीढ़ी को उचित निर्देशन मिलने तथा उचित समय पर उन्हें पारिवारिक अधिकार मिल जाने के दृष्टिकोण से भी यह व्यवस्था हिंदू व्यवस्थाओं की अपेक्षा कहीं अधिक व्यवहारिक है। सातवीं हेडिंग है, मानवीय गुणों का विकास। एक मानवतावादी समाज की स्थापना करने में भी आश्रम व्यवस्था के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि तनिक ध्यान से देखा जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि आश्रम व्यवस्था से संबंधित विभिन्न व्यक्ति ने सरलता, पवित्रता, निष्ठा, सहिष्णुता, सामाजिक सेवा, समानता, बंधुत्व, उदारता और आध्यात्मिकता के गुण उत्पन्न करने के प्रयत्न किए हैं। इन्हीं गुणों के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति इतनी लंबी अवधि में सुरक्षित रह सकी। निष्कर्ष, आश्रम व्यवस्था के संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व का विकास करने तथा समाज को संगठित करने में इस व्यवस्था ने महत्वपूर्ण योग दिया है। भारतीय संस्कृति के अधिष्ठाता महर्षि इस तथ्य के बारे में पूर्णतया जागरूक थे कि व्यक्तिगत जीवन को संगठित किए बिना समाज कल्याण में वृद्धि नहीं की जा। आश्रम व्यवस्था इसी जागरूकता के सुंदरतम अभिव्यक्ति थी। इस संबंध में एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सभी आश्रमों का अंतिम लक्ष्य ब्रह्मा अथवा मोक्ष की प्राप्ति करना ही था। यदि हम मोक्ष को पूर्णतया एक धार्मिक विश्वास मानकर इस लक्ष्य को अत्यधिक महत्वपूर्ण न भी माने तो भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सभी आश्रमों का उद्देश्य एक नैतिक जीवन के द्वारा मानवीय मूल्यों को अधिक से अधिक प्रभावपूर्ण बनाना था। इस लक्ष्य से भी मोक्ष की वास्तविकता अपने आप स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि मोक्ष का तात्पर्य सुख और विलास से युक्त किसी दूसरे लोक में पहुंच जाना नहीं, बल्कि अपने गुणों की एक स्पष्ट छाप समाज पर छोड़ देना है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि आश्रम व्यवस्था ने वास्तव में हमारे समाज को किस सीमा तक प्रभावित किया है। यह एक निराशापूर्ण और हतोत्साहित करने वाला प्रश्न है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि वैदिक काल से लेकर संस्कृति काल तक व्यक्ति विभिन्न आश्रमों में रह जीवन व्यतीत करते थे, जबकि अधिकतर विद्वानों का विश्वास है कि इस व्यवस्था को केवल सैद्धांतिक मान्यता ही मिल सकी, जबकि व्यवहार में इसे बहुत ही कम लागू किया जा सके। जहाँ तक वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था के प्रचलन की बात कही जाती है, यह बिल्कुल निराधार है, क्योंकि हम पहले ही कह चुके हैं कि आश्रम व्यवस्था की योजना पर उत्तर वैदिक काल से ही विचार आरंभ हुआ। वेदों में भी तो इनका उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में जहाँ आश्रम व्यवस्था का सबसे अधिक उल्लेख है, वहाँ भी इसका केवल सैद्धांतिक पक्ष ही मिलता है। वास्तविक उदाहरणों में भी बहुत अधिक कमी है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाभारत काल में आश्रम व्यवस्था केवल कुछ ऋषियों, मुनियों, धर्मपरायण राजाओं के जीवन तक ही सीमित थी। इसके उपरांत भी ऐसे उदाहरण केवल अपवाद के रूप में ही मिलते हैं। पिछले 1000 वर्षों के इतिहास में तो आश्रम व्यवस्था के व्यवहारिक उपयोग का कोई उदाहरण ही नहीं मिलता। आश्रम व्यवस्था हमारे समाज में व्यवहारिक रूप क्यों नहीं ले सकी, यह भी एक विचारणीय प्रश्न। वास्तव में यह व्यवस्था अनेक प्रकार से उपयोगी होने के बाद भी अनेक दोषों के कारण सैद्धांतिक बनी रही। पहला, सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्रह्मचारी को मिलने वाली शिक्षा केवल सैद्धांतिक और धर्म प्रधान थी। इसमें जीवन की वास्तविकता का पूर्ण अभाव था। फलस्वरूप बहुत से व्यक्ति ऐसे शिक्षा के प्रति उदासीन रहते होंगे। दूसरा, इसका दूसरा दोष गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को इतने अधिक दायित्व सौंप देना था जिसकी वास्तविक रूप से पूर्ति कर सकना अत्यधिक कठिन कार्य था। तीसरा, वास्तविकता तो यह है कि गृहस्थ जीवन के बाद और वह भी 50 वर्ष की आयु में एकाएक परिवार छोड़ देना यह कठिन और शंकाप्रद स्थिति है। इस आयु में यह आवश्यक नहीं है कि वानप्रस्थी की संतानें परिवार का दायित्व संभाल सकने योग्य बन। ऐसी स्थिति में गृहस्थ आश्रम को त्यागने के बारे में व्यक्तियों का उदासीन हो जाना स्वाभाविक ही है। चौथा, हम सैद्धांतिक रूप से कुछ भी कहें, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारे समाज में पद लोलुपता और उच्च स्थिति का एकाधिकार की भावना सदैव विद्यमान रही है। 50 वर्ष की आयु में पहुंचने के बाद व्यक्ति जब अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करके परिवार में प्रभुत्व स्थापित करने की स्थिति में होता है, तब वो अपने अधिकारों का प्रत्याग कैसे कर दे। इस प्रकार इस व्यवस्था में त्याग का महत्व भी केवल सैद्धांतिक ही रहा है। पांचवा, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गुरु के आश्रम में शिक्षा का स्वरूप भी अनेक पूर्वाग्रहों से प्प्रभावित था। प्रत्येक गुरु साधारणतया 5 शिष्यों को ही स्वीकार करता था और ये शिष्य केवल सवर्ण और अभिजात परिवारों से ही लिए जाते। इसका तात्पर्य है कि ब्राह्मण गुरु साधारणतया ब्राह्मणों के अतिरिक्त जनसाधारण में शिक्षा का प्रचार करना पसंद नहीं करते थे। इनमें निम्न जातियों द्वारा तथा जनसाधारण में इस व्यवस्था के प्रति अवश्य ही असंतोष महसूस किया होगा। छठवां, आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संन्यास आश्रम का विधान इतना सैद्धांतिक है कि इसे कठिनता से व्यवहारिक रूप में लिया जा सकता है। एक और 75 वर्ष की आयु में शरीर इतना जर्जर और रोगग्रस्त हो जाता है कि सन्यासी शारीरिक कष्ट से उठने की स्थिति में नहीं रह सकता, और दूसरी ओर संन्यास ग्रहण करने वाले अधिकतर व्यक्ति यह भी अनुभव करते होंगे कि जब बहुत से एक दूसरे वृद्ध व्यक्ति समाज सुधार और सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के नाम पर सभी सुखों को प्राप्त करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का दावा कर रहे हों, तो वे इस आश्रम के अनेक कष्टों को क्यों सहन करें। संभवतः इसी कारण अपने आरंभिक समय से ही संन्यास आश्रम त्याग कर प्रतीक न बनकर भौतिक सुखों की इच्छा में परिवर्तित होने लगा। आज भी संन्यास आश्रम में कुछ व्यक्ति अवश्य देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसे संन्यासियों को 3 भागों में विभाजित करके उनकी वास्तविकता को समझा जा सकता है। कुछ वे हैं जो मठों और संप्रदायों की संपत्ति पर अपने अधिकार के लालच में संन्यासी बनते, दूसरे वे हैं जो विघटित और कष्टप्रद पारिवारिक जीवन से छुटकारा पाने के लिए सन्यासी बने हुए हैं, और तीसरे वे हैं जो गृहस्थ आश्रम के दायित्वों को पूरा किए बिना युवा अवस्था में ही सन्यासी हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आश्रम व्यवस्था में मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों और उसके दायित्वों में कोई सामंजस्य न होने कारण यह व्यवस्था कभी भी व्यवहारिक रूप नहीं ले सकी। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था यहीं समाप्त होता है।